اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پیج نمبر 125 صفحے سے اس کی یہ جو لاسٹ پیراگراف ہے وہاں سے پڑھیں گے. اس چیپٹر میں ہم نے جو بات خاص طور پہ پڑھی کہ یہ شخص اکبر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کیا پڑھنے لگے ہیں. اب اس کی وضاحت جس طرح سے حضور مرشد کریم کر رہے ہیں اس کو اسی طرح ہونے دیں، یعنی اپنے اندازے نہ لگائیں اور بالکل ذہن کو ریلیکس کر کے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا بتا رہے ہیں. اب کل ہم نے آخر میں یہ پڑھا کہ گلاس میں پانی بھر کر اگر ہم ایسے کر کے اسے دیوار کی طرف پانی کو اچھالیں، گلاس کو نہیں پھینکنا، تو پانی پھینکنے کے بعد جب پانی دیوار پہ پھیل جائے گا تو اسے غور سے دیکھیں کیا ہوگا کہ دیوار کے اوپر شکلیں جانوروں کی یا پودوں کی یا کوئی انسانوں کی ملتی جلتی کوئی شکلیں دکھیں گی جو خلا ہوگا جہاں پانی نہیں گرا ہوگا یا جو پانی سے جو صورت بن رہی ہوگی، ٹھیک ہے. تو جس طرح دیوار کے اوپر پانی پھیل کر بکھر کر مختلف شبیہیں بنا لیتا ہے، اسی طرح نزول کرنے والی روشنیاں جب کائنات کی سکرین پر نزول کرتی ہیں تو شکلیں بنتی ہیں. یہ اب پیچھے اس کیا نظام چل رہا ہے اس کی بات مثال دے کر بتا دی، اور یہی شکلیں افراد کائنات ہیں. اب ماں کے ٹکرانے کے بعد، اب ماں پانی کو بتایا، یہ بھی کہا کہ اسی روشنی کو یا پانی کو آج کی ماڈرن سائنس گیسز کے نام سے جانتی ہے، تو یہ گیسز بھی تو روشنی ہیں. اسی روشنی کو یا پانی کو، صاف تو کہہ رہے ہیں روشنی ہے، پانی جو ہے یہ بھی ایک روشنی ہے، کہ ماں کے ٹکرانے کے بعد شبیہ کے اندر بنیادی مسالہ پارے کی طرح ہوتا ہے. بنیادی مسالہ پارے کی طرح ہوتا ہے، ماں کے ٹکرانے کے بعد دیوار سے جیسے پانی ٹکرایا تو جو شبیہ بن رہی ہے، اسی طرح جو کائناتی روشنیاں جب کائنات کی سکرین پہ ٹکراتی ہیں تو ان کا جو نیچے سب سے بنیادی مسالہ ہے وہ پارے کی طرح ہوتا ہے. اب اسے سمجھیں کہ پارے سے کیا مراد ہے. پارا کہتے ہیں ایسی سطح کو جس سے روشنیوں کا انعکاس پورا ہوتا ہے، پارے میں روشنی نہیں جذب ہوتی، یہ خاصیت ہے. اس لیے پارا لکھ کے کہا کہ بنیادی مسالہ پارے کی طرح ہوتا ہے، یعنی ہر وہ سطح جہاں روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہو. اب روشنیوں کے بہاؤ کے بعد روشنیوں سے مل کر اور ایک دوسرے کے اندر جذب ہو کر جو اجسام بنتے ہیں، انہیں اجسام کو حیوانات، نباتات اور جمادات کہا جاتا ہے. حضور قلندر باب اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے گیسوں کے مجموعے سے بننے والی چیزوں کے لیے استعمال ہونے والی گیس کی ابتدائی شکل کا نام نسواں بیان کی ہے. گیس کی ابتدائی شکل یعنی روشنیوں اور گیس، روشنیوں کا گیس بننے کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جو زون ہے، اس کو نسواں کہتے ہیں. یعنی گویا روح ہے، پھر ذہن ہے، پھر جسم ہے. تو ذہن جو اس کو ہی نسواں کہا جا رہا ہے. میں بار بار یہ لفظ بول دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رجسٹر ہو جائے کہ یہ نسواں جو ہے یہ وہ ذہن کی لہریں ہیں جو اللہ کے ذہن سے چلتی ہوئی روشنیوں کی صورت میں نزول کر کے مادے سے ذرا سا پہلے کا درجہ جو ہے اس کا نام ہے نسواں. یعنی نسواں ان بنیادی لہروں یا ان بنیادی شعاؤں کا نام ہے جو وجود کی ابتدا کرتی ہیں. روشنیوں کی یہ لہریں جب فلو میں ہوتی ہیں یا ان کے اندر بہاؤ پیدا ہوتا ہے تو انہیں لکیروں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. یعنی آپ जो रोशनी की लहरें जब फ्लो कर रही हों, यानी बह रही हों, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही हैं, तो इसको हम लकीरों से तशबीह दे देते हैं। तो ये लकीरें कायनात में इस तरह फैली हुई हैं कि न तो एक दूसरे से फासले पर हैं और ना एक दूसरे में पैवस्त हैं। ये इम्पॉर्टेंट नुक्ता है कि ये जो रोशनी की लहरें हैं, ये एक दूसरे के साथ, एक दूसरे में जज्ब भी नहीं होती और एक दूसरे से फासले पर भी नहीं होती। अब इसकी मादी मिसाल, सिनेमा में चलने वाली फिल्म है और एक मखसूस रोशनदान के जरिए लहरों का बहाव होता है। रोशनी और लहरों का ये बहाव स्क्रीन पर नजूल करता है और स्क्रीन से टकरा कर मुख्तलिफ शक्लों और सूरत में मुजाहरा करता है। ये पेज नंबर देखें 127 पे, इसको जरा देखें कि ये प्रोजेक्टर में से, ये इसमें टेढ़ी टेढ़ी वो क्या लहरों की तरह की लाइनें दिखा के नीचे बताया कि ये है रूहे अकबर, और फिर ये लकीरें इसमें से निकलकर लहरें ये फ्लो कर रही हैं, और आगे एक स्क्रीन है जिसके ऊपर ये हाथी बना हुआ है, तो पहाड़ बने हुए हैं, तो चींटी बनी हुई है, तो कबूतर बना है, तोता बना है, या इंसान बना है, जिन्नात हैं, फरिश्ता है, चीता है, खरगोश है, मछली है, दरख्त है, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। और इन लाइनों के नीचे जो लिखे हैं, ये इनके नाम लिखे हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें इन लकीरों में हैं। और ये जो है, ये शख्स अकबर कहलाती है, ये सतह जहाँ पे ये लकीरों के अंदर है, इसे हल्का नोई कहते हैं। लेकिन मुरक्कब होके और मुतगैर हो जाती हैं तो ये फर्द हो गया, इसी को शख्स असगर का है, यानी नोई हल्का जो है ये है शख्स अकबर का, नोई हल्का। एक है नुक्ता वहदानी, ये नुक्ता वादानी गैर मुतगैर है, इसमें नहीं तब्दीली होती, इसी का नाम है रूहे अकबर। और इसके नीचे देखें तो क्या फर्द जो है ये जमा, यानी शख्स अकबर की सदा पे जमा लिखा है, और रूहे अकबर की जगह पे लिखा है जमा उल जमा। अब सिर्रे अकबर का इसमें तस्करा नहीं किया गया, सिर्रे अकबर ये रूहे अकबर से भी ऊपर है, यानी वो जहन जो रूहे अकबर को बना रहा है, जहां तक इंसानी फिक्र की रसाई हो सकती है उसको जमा उल जमा कहते हैं। ये टेक्निकलिटीज हैं या टर्मिनोलॉजीज हैं। तो ये स्क्रीन का तस्वुर समझ लें कि स्क्रीन पे ये चीजें हमें अलग अलग दिख रही हैं, हालांकि ये रोशनियों में मौजूद हैं, और रोशनियों से पहले ये एक ही नुक्ते में बंद है। वो नुक्ता जहां ये सब चीजें बंद है, उसी का नाम नुक्ता वहदानी है। वहां से ये हल्का है नौई, यानी नौ की सूरत में बन गई, फिर उसके बाद अफराद की सूरत में दिखी। नुक्ता वहदानी से यानी कायनात का डिस्प्ले शुरू होता है, और फिर ये अनवा बन जाती हैं, और फिर अनवा आगे अफराद में तकसीम हो जाती हैं। ये है बुनियादी चीज। अब ये शख्स असगर क्या है, फिर इसमें इंसान को क्या शर्फ हासिल है, या उसको क्या खास मुकाम दिया गया कि वो इन बाकी सब पे हावी हो जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो रोशनियों और लहरों का ये बहाव स्क्रीन पर नजूल करता है और स्क्रीन से टकरा कर मुख्तलिफ शक्लों और सूरतों में अपना मुजाहरा करता है। जब हम प्रोजेक्टर से निकलने वाली रोशनियों या शुआओं को देखते हैं तो ये लकीरें ना एक दूसरे से फासले पर होती हैं और ना एक दूसरे में पैवस्त होती हैं। इस मिसाल को बहुत अच्छी तरह समझ लें, लेकिन हर लकीर में तस्वीर का कोई ना कोई खदो खाल होता है, यानी कोई ना कोई उसके फीचर्स उसमें मौजूद होते हैं। जिस तरह से प्रोजेक्टर से निकलने वाली रोशनियां स्क्रीन से टकरा कर तस्वीरें बनती हैं, इसी तरह खिला में एक बुनियादी वास्ता, ये इसी तरह खिला में से गुजरकर नस्मा की लकीरें जो है ये मादी अजसाम बना रही हैं, अब नस्मा की लकीरें मादी अजसाम में एक बुनियादी वास्ता हैं। दोबारा सुने, नस्मा की लकीरें मादी अजसाम में बुनियादी वास्ता हैं, यानी मीडियम है। नस्मा मीडियम है, देखें ना, ये नुक्ता वादानी को देखें और स्क्रीन को देखें तो दरमियान में ये जो हल्का है, नोई है, जिसे शख्स अकबर कहा, ये सब दरमियानी वास्ता है, ये मीडियम है। अब यहां पे नस्मा को जरा समझ लें। हजूर मुर्शिदे करीम फरमा रहे कि प्रोजेक्टर से निकलने वाली शुआओं को मादी आंख देख सकती है। अब इस मिसाल को वाजे कर रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्टर से निकलने वाली शुआएं, वो उसका हमें मादी आंख से देखने पे एक एहसास होता है, लेकिन नस्मा की लकीरों को सिर्फ शहूद की आंख देख सकती है, यानी वो आंख जो मुशाहिदा कर सकती है वो देख सकती है। मादी जरिए से अभी तक नस्मा को देखना मुमकिन नहीं हुआ। अलबत्ता इन लकीरों के तासुरात को साइंसी इजादात के जरिए देख लिया गया और आजकल औरा की इस्तलाह जबान जदे आम है। नस्मा की लहरों का इनकास औरा है, लेकिन नस्मा का देखना अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। अब यहां पे एक दो बातें मैं अर्ज कर देता हूं। एक टेक्निक है जिसे किरलियन फोटोग्राफी कहते हैं। उसमें यह होता है कि वो हाई पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक वेव्स के जो फील्ड बनती है उसमें किसी जिस्म को रख के उसकी तस्वीर ली जाती है, तो वो जो उसके गिर्द रंगों का एक जिस्म नजर आता है, हाला सा नजर आता है, लोग उसको औरा कहते हैं। और हमारे यहां इसी औरा को नस्मा कह दिया गया, हालांकि मुर्शिदे करीम वाजे कर कह रहे हैं, वजाहत से फरमा रहे हैं कि नस्मा को देखना तो मुमकिन ही नहीं है। अब उसकी मिसाल है कि मैग्नेटिक फील्ड को नहीं देखा जा सकता, लेकिन मकनातीस की लहरों के असरात दिखते हैं। फर्क देखें, मकनातीस की लहरें नहीं दिखती, मकनातीस की लहरों के असरात को महसूस किया जाता है। तो इसी तरह नस्मा नहीं दिखता, ना देखा जा सकता है। नस्मा का देखना अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। अब बाज लोग कहते हैं जी किसी को देखकर हमें उसका नस्मा नजर आ गया। नहीं नहीं नहीं, वो असल में जहन को रीड करना एक अलग सलाहियत है, उसे टेलीपैथी कहते हैं। नस्मा को लोग औरा देखता है मुझे, बाज लोग कहते हैं मैं औरा देख सकता हूं, आपके ये रंग हैं। असल में उनके जहन की हिसासियत उनको ये बता रही है कि इस बंदे में कौन से रंग ज्यादा हैं या कौन से कम हैं। अब हमारे यहां बहुत सारी इस्तलाहात को मैं क्या कहूं इसके लिए, यानी वो लोग जो इल्म रखते नहीं हैं लेकिन दावा है कि उन्हें पता है, तो वो इस किस्म की बातें कर जाते हैं। तो नस्मा ऐसी लहरों को कहते हैं कि जिन लहरों से जिस्मानी खदो खाल बनते हैं। ये लहरें, अब देखिए जो बंदा इन लहरों को देख रहा है वही तो बता रहा है कि ये लहरें जो हैं ये दो तरह की हैं। एक लहर मुफरद है, दूसरी लहर मुरक्कब है। मुफरद लहरों में भी खदो खाल और नक्शो निगार हैं और मुरक्कब लहरों में भी खदो खाल है। मुफरद और मुरक्कब लहरें खिला में फैली हुई हैं। अब ये लकीरें मुफरद हों या मुरक्कब, मादी अजसाम में खदो खाल बनती हैं और खदो खाल को हर दूसरे फर्द पर मुनक्कस भी करती हैं। इन्हीं लहरों के तासुरात से हिस्से बनती हैं, ये हिस्यात जो हैं वो इन लहरों से बनती हैं, सेंसेस जो हैं हमारे, और यही लहरें इंसानी दिमाग के ऊपर जब नजूल करती हैं तो दिमाग के ऊपर एक दबाव सा पड़ता है, इतना हल्का दबाव के हवास के दायरा कार में नहीं आता। ये हल्का सा दबाव जिंदगी के किसी अमल से मुतालिक हो या माजी और हाल से मुतालिक हो वहमा कहलाता है। इत्तला का प्रेशर जो है उसका नाम है वहमा। जब ये दबाव जरा ज्यादा होता है तो हवास में हल्का सा इर्ताश होता है। अब इस इर्ताश से जहन के ऊपर बनी हुई तस्वीर में खाका बनता है और तस्वीर इस खाके को गहराई में महसूस करती है। अब अहले तसव्वुफ इस कैफियत को ख्याल कहते हैं। यह है ख्याल। जब रोशनियों का नजूल और गहरा हो जाता है और दिमाग के ऊपर नक्शो निगार ज्यादा वाजे हो जाते हैं तो जहन में ये बात आने लगती है कि फलां चीज के बारे में ख्याल आ रहा है। तो रूहानी अहले रूहानियत इस कैफियत को तसव्वुर कहते हैं। और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहते हुए तसव्वुर के बाद एहसास बन जाता है और एहसास के अंदर जब गहराई पैदा होती है तो नस्मा की लहरों के अंदर मख्सी रंग नुमाया हो जाते हैं। यानी एहसास के अंदर रंगीनी पैदा हो जाती है। जब एहसास के अंदर रंगीनी पैदा हो जाती है तो वहमा ख्याल तसव्वुर और एहसास अपने पूरे खदो खाल के साथ मजहर बन जाता है। अब यहां पे इसको समझ लें कि मजहर कहा है वो खारिज में हो या आपके जहन की स्क्रीन पे हो, मजहर दोनों सूरतों में मजहर होता है। लेकिन हम चूंकि महदूद तर्जों में सोचने की आदत है, बद में मुबतला है, लिहाजा हम समझते हैं कि जी मेरे सोचने से कोई चीज मजहर नहीं बन रही। अरे भाई, आपको एक चीज महसूस होने लगी आपके जहन में तो वो मजहर तो बन गई। मजीद उसका मुजाहरा खारजी तौर पे करने के लिए उसके लिए एक्स्ट्रा ताकतें चाहिए। अब इसमें ये मुरक्कब और मुफरद को मैं इजाजत चाहूंगा कि जरा थोड़ी सी वजाहत कर दूं। आपने ऐसे पर्दे देखे होंगे जो सीधे लड़ियों से बनते हैं, यानी बीड्स, दाने नहीं, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, मुख्तलिफ रंगों के बीड्स को परो के तो वो तारों की सूरत में, पर्दे की सूरत में लटका दिए जाते हैं। आपने देखा होगा, मैंने तो खैर देखा है कि इस तरह लटके हुए बीड्स की मदद से तस्वीर बनती है। लटके हुए बीड्स अगरचे अलहदा अलहदा नजर आते हैं लेकिन उनको ओवरऑल देखें तो ऐसे लगता है जैसे कोई पहाड़ी सी बनी हुई है या कोई फूल सा बना हुआ है या तितली सी बनी हुई है। अब अगर आप इस पर्दे को समेट दें, यानी कि उसकी रेलिंग के ये सारी लड़ियों को एक जगह इकट्ठा कर दें तो ये सुकड़ जाएगी। लेकिन अगर आप इसे साइडों पे फैला दें, पूरे दरवाजे में बखेर दें, फर्ज करें कि एक एक इंच के फासले पे या एक एक सेंटीमीटर के फासले पे बराबर उस फासलों पे इसे लटका दें तो वो मंजर जो है फिर भी दिखेगा। अब अगर तो इसे हम मुफरद लहर कह रहे हैं, यानी इस तरह एक तरफ ऊपर से नीचे की तरफ लड़ियां बनी है तो ये मुफरद लहर की मिसाल है। अब अगर आप कपड़े का पर्दा लटकाते हैं तो उस पर तस्वीर बनी हो तो कपड़े में और इन लड़ियों में क्या फर्क है? ताने और बाने का, ताना यानी सीधी लड़ियां और बाना यानी उसके वर्टिकल, उसको हॉरिजेंटल, वर्टिकल के अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल सतह पे ये जो बुनत की लहर चलती है जो वर्टिकल लहरों को वहीं बांध देती है, फिर वो वहां से हिल नहीं सकते। तो इसमें दो लहरें हुई तो इसे नस्मे मुरक्कब कहते हैं। कपड़े की मिसाल देखें, कपड़े को आप पकड़ के खींचे वो नहीं खींचेगा। अब यहां से ये बात की वजाहत इसलिए की जा रही है क्योंकि आगे जिन और जिन्नात और इंसानों की बनावट का जिक्र आएगा, तो इसलिए मैंने यहां चाहा कि आपको जरा ये बात यहीं पे वाजे हो जाए कि मुरक्कब लहर और मुफरद लहर से क्या मुराद है। मुरक्कब लहर जब दो लहरें आपस में एक दूसरे को वीव कर दें, बुनत 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 यानी उसको बुन दें, जिसे वीविंग कहते हैं। अब रोशनियों का ये सारा बता दिया कि ये जब वाहमा क्या है, इत्तला का दिमाग पे दबाव पड़ता है, जहन पे दबाव पड़ता है, जब जहन उस तरफ मतवज्जो हो गया वो ख्याल कहलाया। जब उससे नीचे आया तो ये تصور بن گیا، اب اس کے خد و خال واضح ہو گئے، اور جب وہ احساس بن گیا، احساس کے اندر گہرائی پیدا ہو گئی، تو نسمے کی لہروں کے اندر پھر مخفی رنگ نمایاں ہونے لگتے ہیں، اور ایک چیز رنگینیوں کی صورت میں دکھنا شروع ہو جاتی ہے. دکھنے کا عمل پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ الٹیمیٹلی ہمارے ذہن کی سکرین پہ ہوتا ہے. باہر دیکھنا اگر موقوف کریں گے تب یہ باتیں سمجھ آئیں گی. اب دنیاوی علوم کی طرزوں میں ہم نسمے کی تعریف ڈرائنگ سے بھی کر سکتے ہیں. اب ایک کاغذ ہے، اس پہ سیدھی لکیریں بنی ہیں، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف، ٹھیک ہے جی. یہ آ جائیں پیج نمبر 132 پہ اور 133 پہ. یہ جو سیدھی لکیریں ہیں، اگر ہم اس جملے کو جس کو پڑھ رہے ہیں اس کو ساتھ میں یہ پیج نمبر 133 کو دیکھیں، تو اس میں جو ڈاٹس دکھا رہے ہیں اس سے جن بنے گا. یعنی سیدھی لکیریں بنی ہوئی ہیں، ان سیدھی لکیروں میں کچھ تصویر ابھری ہوئی ہے. اور دوسرے کاغذ یا پیج نمبر 132 پہ دیکھیں تو سیدھی لکیر کو دوسری لکیر کاٹ رہی ہے، تو یہ نسمہ مرکب کی مثال ہو گئی. اور ان دونوں لکیروں کے عمل سے کاغذ کے اوپر چھوٹے چھوٹے چکور خانے بن جاتے ہیں. ہم ان چکور خانوں سے ایک تصویر بناتے، اور تصویر بناتے وقت گراف کے خانوں کو معین تعداد کے ساتھ تصویر کے خد و خال بناتے ہیں. یعنی ہم ان خانوں کے ناپ اور خانوں کی تعداد سے مختلف اعضاء کی ساخت کا تناسب مقرر کرتے ہیں، اور گراف پر تصویر کشی کرتے ہیں. بالکل اسی طرح نسمے کی لکیریں مادی اجسام کی ساخت میں اصل کا کام دیتی ہیں، اور انہی لکیروں سے نوئیں بنتی ہیں، اور نوؤں کے خد و خال وجود میں آتے ہیں. اب لوہے محفوظ کے قانون کی روح سے احساس میں رنگینی پیدا ہونے کے بعد رنگ مظہر بنتے ہیں. اب رنگ بھی تو لہریں ہی ہیں نا، لیکن جب تک اس کے اندر گہرائی اور رنگینی پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم ان لہروں یا شعاعوں کو کسی رنگ کا نام نہیں دے سکتے. یعنی یہ کہنا کہ یہ سرخ ہے، الا ہے تو دونوں ہی لہر، یا پیلا ہے یا نیلا ہے، ہیں تو ساری لہریں، لیکن لہر جو ہے اس کا نام ہم تب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جب اس میں گہرائی پیدا ہو جائے، اس میں رنگینی اسی کو کہا جاتا ہے. اس لیے مادی آنکھ ان کا احاطہ نہیں کرتی، کیونکہ ابھی ذہن میں ہے نا، تو وہ باہر مادی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. دراصل نسمے کی لکیریں یا بے رنگ شعائیں یہ کائنات اور افراد کائنات کی چھ بڑی حرکات ہیں. یہ ہیں وہ چھ تنزلات یا چھ حرکات. ان لہروں، لکیروں یا بے رنگ شعاؤں کا جتنا اجتماع ہوتا ہے، اتنا ہی یہ لہریں ضرب اور تقسیم ہوتی ہیں. انہی لہروں کے نزول اور ان کے بکھرنے سے کشش ثقل بنتی ہے. یہ ہے آپ کے کشش ثقل کا اصل قانون، جس کی ابھی آپ کی مادی سائنس کو ہوا بھی نہیں لگی، اور وہ نیوٹنز لا آف گریویٹی پہ اصرار کیے جا رہے ہیں. یہ لہروں کے نزول اور ان کے بکھرنے سے کشش ثقل بنتی ہے، اور انہی لہروں کی حرکات اور گردشیں وقفہ بناتی ہیں. یہی لہریں اور ان کی حرکات گردشیں، حرکات اور گردشیں وقفہ بناتی ہیں. اس کو بعد کے چیپٹرز میں حضور مرشد کریم نے بڑی وضاحت سے دوبارہ سمجھایا ہوا ہے. اس وقت اگر سمجھ نہ بھی آئے تو اسے صرف کوشش کریں کہ یہ یاد ہو جائے بات کیا، کہ لہروں کے نزول اور ان کے بکھرنے سے کشش ثقل بنتی ہے، और इन्हीं लहरों की हरकत और गर्दिशें, नजूल और बिखरने से कशिश शकल बनती है, और इन्हीं लहरों की हरकत और गर्दिशें वक्फा बनाती, यानी कशिश शकल कैसे बनती है, लहरों के नजूल और बिखरने से, ऊपर से नाजल होके जब ये स्प्रेड आउट हो रही है, फैल रही है, तो ये असल में कशिश शकल को जनरेट करती हैं। और फिर यही लहरें जब हरकत करती हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं या दाएं बाएं हो रही हैं या आगे पीछे हो रही हैं, तो ये हरकत जो हैं ये गर्द और इनकी फिर आगे रोटेशन गर्दिशें ये वक्फा बनाती है। अब इस बात को मैं क्यों इसरार कर रहा हूँ, ये आगे जुमला सुने। लकीरों की यानी लहरों की इज्तमाईयत एक तरफ मकानियत से आशना करती है, यानी जहन को मकानियत से रूशनास करा रही है। क्या? लकीरों की इज्तमाईयत, लकीरें जहां ज्यादा मुज्तमा हो, जहां ज्यादा लकीरें जमा हो जाएं, वहां पे हमें मकानियत का एहसास होता है। दूसरी तरफ इन्हीं लकीरों का दिमाग पर बिखरने का अमल जमानियत है। इन्हीं लकीरों का या इन्हीं शुआओं का या इन्हीं लहरों का दिमाग पर बिखरने का अमल जमानियत है। लकीरों के नजूल, लकीरों के बिखरने, लकीरों की गर्दिश और लकीरों की जर्ब तकसीम, ये नस्मा का जज्ब है, इसे नस्मा का जज्ब कहते हैं। अब ये एक इस्तलाह है कि नस्मा कैसे जज्ब होता है, लेकिन ये नजूल, उनके बिखरने, उनकी गर्दिश और उनकी जर्ब तकसीम, ये चार दर्जे बताए हैं। नजूल, बिखरना, फिर उनकी गर्दिश, गर्दिश का मतलब है उनकी दोहराई, उनका लहरों का बार बार रिपीट होना, यानी आपके जहन के अंदर वो ट्रैप होकर तो गर्दिश कर रही हैं, यानी बार बार एक ख्याल तकरार कर रहा है, यूं कह लें। यानी नस्मा अपनी जरूरत और तबई तकाजों के तहत मुमकिन की शक्लो सूरत इख्तियार कर लेता है, यानी नस्मा इन लकीरों के इन चार कामों से, यानी नजूल, बिखरने, गर्दिश और जरब तकसीम से अपनी जरूरत और तबई तकाजों के तहत मुमकिन की शक्लो सूरत इख्तियार कर लेता है। अब तसव्वुफ में मुमकिन का मतलब है किसी चीज को तकमील के बाद मादी आंख देख सके, यानी अब आपके जहन में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो सब मुमकिन हैं अगर आप जहन में लकीरों का इज्तमा कर। इसकी मिसाल देखें, अब सारी प्रोबेबिलिटीज, अब गंदम के पौधे पे जब गंदम के दाने बनते हैं तो आप देखेंगे कि हर दाना दूसरे दाने से थोड़ा सा फर्क जरूर रखता है, यानी कितने इम्कानात हैं, ये तादाद हजारों में नहीं है, ये लाखों में नहीं है, ये करोड़ों में नहीं है, ये अरबों खरबों में, क्योंकि अरबों खरबों किस्म के पत्ते दो आप एक जैसे पत्तों में से आप दो पत्ते एक जैसे नहीं ढूंढ सकते। इस वक्त 7 अरब से ज्यादा आबादी है, ठीक है, 7.5 अरब बात बता रहे हैं, दो बंदों दो अफराद की उंगलियों के पोरों के निशान एक दूसरे से नहीं मिलते, आंख के डेलों के अंदर की जो डिजाइनिंग है वो एक दूसरे से नहीं मिलती। तो ये मुमकिनात किसको कहते हैं कि एवरी पॉसिबल शेप, तो मुमकिन जब तक शय की मादी सूरत वजूद में ना आए, यानी मादी वजूद में आने से पहले तक हर शय की हालत को तमस्सुल या तहक्कक कहते हैं। तहक्कक का लफ्ज हक से है, हकीकत, यानी वहां तक हकीकत है, उसके बाद सब इल्यूजन है, इसी को तमस्सुल कहते हैं, यानी ये मिसाल है, असली जिस्म की मिसाल होती है, यानी असल में जिस्म तो अंदर है, उसकी मिसाल वो बन रहा है बाहर, तो उसको तमस्सुल भी कहते हैं और तहक्कक भी कहते हैं। अब इब्तदाई हालत को, यानी इन रोशनी की लहरों कि इस इब्तदाई हालत को रूह की आंख और इंतहाई हालत को जिस्म की आंख देखती है। इब्तदाई हालत यानी रोशनियों का जो पहला जोन है जिसमें चीज बनना शुरू हुई थी, उसकी इब्तदाई हालत को रूह की आंख देखती है, नस्मा की नहीं। फिर उससे नीचे के दर्जों में एक दर्जे पे नस्मा की आंख देखती है, फिर इंतहाई हालत को जिस्म की आंख देखती है। नस्मा दरअसल वो मख्फी रोशनी है, दरअसल वो मख्फी रोशनी है रोशनी लेकिन छुपी हुई, जिसको नूर की रोशनियों में देखा जा सकता है। और नूर वो मख्फी रोशनी है जो खुद भी नजर आती है और दूसरी मख्फी रोशनियों को भी दिखाती है। यहां रुक जाते हैं क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए काफी हैवी हो गया है। हालांकि बात बड़ी मुख्तसर सी यूं है कि हजूर मुर्शिदे करीम ये बता रहे हैं कि ये रोशनियों का नजूल जो है वो किसी सतह से हो रहा है, जहां से नजूल शुरू होता है उसे नुक्ता वादानी कहा, उसके बाद उसके तीन दर्जे बन गए, एक शख्स अकबर का वो है नोई हलका, और उसके बाद है शख्स असगर का, यानी क्या इन अफरादी अफराद की सूरत में। और उसके बाद हजूर ने ये फरमाया कि किस तरह वहमा ख्याल बनता है, ख्याल है तसव्वुर बनता है, तसव्वुर जो है वो एहसास बनता है, और एहसास को मजर बनाने का आज जो खास नुक्ता इसमें वाजे किया कि मजर जब खारिज में दिखे तो उसके लिए जरा ज्यादा रोशनियां चाहिए, वरना वो दिमाग की स्क्रीन पे दिख जाता है। तो कल इंशाल्लाह हम रोशनी और नूर का जो ज़ेली चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये थोड़ा हैवी लग रहा है लेकिन है नहीं, अगर आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये ज़हन नशीन होना शुरू हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत नवाजिश। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।